श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6। पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है। तात्पर्य, यानी भगवान यहाँ पे अब विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इससे पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और जैसा हमने पहले चर्चा किया था, अर्जुन की इच्छा हृदय में थी कि सब जाने कि कृष्ण भगवान हैं। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। वो खुद कृष्ण की पूजा करते हैं और प्रयास करते हैं कि पूरे विश्व में बता सके, समझा सके लोगों को कि भगवान जो हैं वो हैं कृष्ण। तो इसी कारण से भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं। भगवान ऑर्डर कैरियर नहीं है, लेकिन प्रेमवश अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान यद दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष बैठे हैं सारथी के रूप में, तो ये कल्पना तो नहीं कहना चाहिए, इस धारणा को स्वीकार कर पाना, इस विचार को स्वीकार कर पाना कि पूरा जगत भगवान कृष्ण के इस वपु में है, शरीर में है, जो कि साइज में ऑलमोस्ट अर्जुन जैसा ही दिखते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। ये प्रायः मायावादी लोगों की धारणा होती है कि परम सत्य एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भौतिक रूप की सीमितता है वो आध्यात्मिक रूप पे आरोपित नहीं की जा सकती। भौतिक रूप लिमिटेड होता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप होते हुए भी असीमित होता है। ये अचिंत शक्ति है भगवान की, जिसको हम तर्क से नहीं समझ सकते। तो भगवान यहाँ पे दिखाएंगे इसको। और एक बात और आश्चर्यजनक चीज है कि भविष्य में जो होने वाला है वो भी दिखाएंगे, यानी कि भविष्य भी भगवान के कंट्रोल में है। अद्भुत होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। हम तो सोचते हैं कि भविष्य सब कुछ अपने आप ही होता है, बाई चांस होता है, एक्सीडेंट होता है। एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं होता है, अदृष्ट होता है। मतलब वो कंट्रोलर जो हमें दिखता नहीं है, अदृष्ट जो दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। वर्तमान भी, भूतकाल भी और भविष्यकाल भी। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। इस चीज पे आप एक विचार कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्यासदेव जी को कैसे मालूम चला कि अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में क्या संवाद हो रहा है, हम ये कैसे स्वीकार करें। तो इस श्लोक से ही समझ लेना चाहिए। केवल अर्जुन और कृष्ण के संवाद के बारे में ही नहीं, क्योंकि उस समय तो व्यासदेव इस धरती पे भी थे और अभी भी हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी हुआ है और पूर्व कल्प में भी कुछ भी हुआ है, वो सब व्यासदेव जी की अमोघ दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। वो भगवान के अवतार हैं, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, और इस कारण से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ रखने लायक है भागवतम में, वो रखा गया है। उसी प्रकार से भगवद गीता में भगवान ने क्या क्या बातें बोली अर्जुन को, ये अपनी दिव्य दृष्टि से वो व्यासदेव अपने आश्रम में बैठे हुए भी देख पा रहे थे, और उसको संकलन किया है हमारी कृपा, हमारे लिए, हम पर कृपा करने के लिए। हमारे पास अगर बुद्धि है थोड़ी सी तो ये समझ लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे कि हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी सी है। समझ रहे हैं? अगर मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है तो मैं समझ लूंगा कि मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है, और मैं इसके द्वारा व्यासदेव और भगवान कृष्ण की क्षमता को आकलन करने का प्रयास ना करूं। आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से कहीं कोई चीज, कोई जंगल में कार्य हो रहा है और उसका लाइव टेलीकास्ट सैटेलाइट के माध्यम से या ना कैसे करके पूरे विश्व में हो जाता है। ये भी हमको समझ में नहीं आता कि कैसे होता है, तो इसलिए विश्वास रखना चाहिए कि व्यासदेव ने जैसा भगवान ने बोला वैसे ही वाणी को अंकित किया है, और उसको हम उनकी कृपा से हमें भगवद गीता मिल रहा है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए श्रद्धा से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी सुंदर बात है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी ब्रह्मांड के आखिरी छोर में क्या हो रहा है वो नहीं देख सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से भक्त इस प्रकार की भौतिक योग्यता को भी प्राप्त कर सकता है, भले ही भक्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अद्भुत बात है कि बार बार प्रश्न करते हैं भक्त, कैसे भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, कैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। बहुत ही गुह्य बात आचार्य लोग समझाते हैं। भगवान कृष्ण जब अपने श्री विग्रह को यहाँ प्रकट करते हैं तो असुरों को भी वो विग्रह दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति से जो उस भगवान का उस विग्रह का जो माधुर्य है उसका आस्वादन असुर लोग नहीं कर पाते हैं, उनके प्रति कोई आकर्षण अनुभव नहीं करते हैं। और वही भगवान की अचिंत शक्ति से उस श्री विग्रह को, भगवान के विग्रह को, भगवान की वाणी को भक्त लोग बहुत आस्वादन करते हैं। तो भगवान का रूप लीजिए, नाम लीजिए, गुण लीजिए, लीला लीजिए, जो भी ले लीजिए, ये सब भगवान से अभिन्न है। और भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति से, अपने योग ऐश्वर्य से इसके माधुर्य को छुपा लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास भक्ति नहीं है। जिस प्रकार से जॉन्डिस वाले व्यक्ति को मीठी चीजें मीठी नहीं लगती हैं, कड़वी लगती हैं, तो ये सब भगवान में नैसर्गिक रूप से है। नाम रूप गुण लीला में सब कुछ माधुर्य है, लेकिन हमारे हृदय से असुरता खत्म होगी यानी भक्ति बढ़ेगी और हृदय शुद्ध होगा, तभी हम अनुभव कर पाएंगे, तभी भगवान अपने माधुर्य को प्रकट करेंगे और हमारे हृदय को कैप्चर कर लेंगे। जो मैं खाली इस बात पे बोल रहा था कि किस प्रकार से जैसे अर्जुन को भगवान ने यहाँ पे दिव्य आंखें दी हैं, उसी प्रकार से हमको भी दिव्य इंद्रियां दे सकते हैं भगवान, अगर हम अपनी हम भक्ति करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भगवान के भक्तों को भगवान का जो द्विभुज रूप है उसी के प्रति आकर्षण होता है। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं या नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन कल्पना कर रहे थे और कोई मोहजाल उत्पन्न किया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भ्रमित करने के लिए, ना, दिव्य चक्षु दिया है इसके द्वारा वो विराट रूप का दर्शन साक्षात कर रहे थे। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वे अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण दृष्टि का मतलब है भक्ति की दृष्टि। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान करी। ये तो स्पष्ट है, समझाना कुछ नहीं है। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे इनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस जगत में लोग भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, झरना है, जल है, बादल है, सुंदरता और जगत की जो सुंदरता है वो भगवान के ऐश्वर्य मात्र हैं, जैसे कि हमने दशम अध्याय में सीखा था। तो लोग उन ऐश्वर्यों के प्रति आकृष्ट हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि लोग सामान्यतः भौतिकतावादी लोग भगवान के जो ऐश्वर्य हैं जो इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं उसके प्रति आकृष्ट रहते हैं उनको भोगने के लिए, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, भगवान के ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं, और इस कारण से भगवान ऐश्वर्यों का प्रदर्शन नहीं करते हैं गोलोक वृंदावन में, क्योंकि भक्त इस प्रकार से नहीं चाहते हैं। भक्त उनसे माधुर्य का आदान प्रदान करते हैं, मधुर लीला चाहते हैं, मधुर संबंध चाहते हैं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। ध्यान देना चाहिए, हमें भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण है और गोलोक वासियों को भी पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमें पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र भी नहीं है, लेकिन गोलोक में आध्यात्मिक जगत में भले ही वो भूल गए हों योग माया के प्रभाव से कि कृष्ण भगवान है, फिर भी उनके जीवन के उनके प्राणों के केंद्र कृष्ण ही होते हैं। ये बहुत अंतर देने वाली बात है। महामाया से जो जीव प्रभावित होता है वो कृष्ण को भगवान के रूप में भी नहीं जानता और कृष्ण को अपने प्राण के रूप में भी नहीं जानता, लेकिन जो योग माया से प्रभावित होते हैं भगवान की अंतरंग शक्ति, तो भले ही वो कृष्ण को भगवान के रूप में ना जाने लेकिन कृष्ण को अपने प्राण के रूप में जानते हैं। बहुत अंतर दोनों चीजों में, आप समझ रहे होंगे मेरा बात का अर्थ। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, और इस चीज को तो हम सामान्य धर्म ग्रंथों से समझ ही नहीं सकते। ये तो बहुत भगवत कृपा है और प्रभुपाद की कृपा है कि इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि भगवान से इतना आत्मीय संबंध भी स्थापित जीव कर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने के अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थम इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेनाम मायाश्रितानाम नरदारकेणा साकं विजहुरु कृत पुण्य पुंजाः। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब इसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तो ये बात सुखदेव को सभी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तो बात इसमें आ रही है कि जो सामान्य ब्रह्मवादी हैं मायावादी हैं वो भगवान को ब्रह्म के रूप में समझते हैं, जो सामान्य साधक हैं जो ऐश्वर्य भाव में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें वो भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, और सामान्य लोग जिन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, वो भी एक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वो भगवान नहीं थे। इस प्रकार से लोग अपनी अपनी धारणा के अनुसार अपनी अपनी चेतना के अनुसार भगवान की धारणा करते हैं, लेकिन इनसे भी कई श्रेष्ठ लोग हैं और वो ये बालक हैं भगवान के सखा जिन्होंने कई कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा करके ये योग्यता प्राप्त करी है कि कृष्ण के साथ वो सखा के रूप में खेलेंगे। और वो योग्यता क्या है? भगवान के चरणों में शुद्ध अमिश्रित प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति, और ये कई जन्मों की साधना के बाद प्राप्त होती है। आप लोग इसे निराश मत होइए, क्योंकि ये फल इतना बड़ा है कि इसके लिए कितने भी जन्म वेट करने पड़े, कितने जन्म भी साधना करने पड़े, व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद का सुख अगर एक बूंद है तो ये भक्ति, ये प्रेमा भक्ति का सुख जो कृष्ण के चरणों में है ये एक सागर की तरह है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन जीवात्माओं को या भगवान के भक्तों को प्रेमी भक्तों को किस प्रकार से सुख मिल रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकते एक बद्धात्मा, इसीलिए उसकी स्प्रिया नहीं करता है। लेकिन सुन करके स्प्रिया हृदय में आती है कि काश मैं भी एक दिन भगवान के संग इस प्रकार से लीला में प्रेम का आदान प्रदान कर सकूं। तो इसके लिए भागवतम है जिसके द्वारा हमारे हृदय में इच्छाएं आती हैं, अन्यथा इस जगत की इच्छाओं में ही, इस जगत में ही, दुख के जगत में, दुख से भरे जगत में ही करियर बनाते रहते हैं। तथ्य तो ये है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण मात्र एक कंसेप्ट है। ये ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण एक व्यक्ति है, वो आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, सभी के हृदय में है। और कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है वो हिंदू भगवान है, हिंदू भगवान नहीं है, वो सबके भगवान है, मुसलमानों के भी भगवान है, वही अल्लाह है और वही जीसस क्राइस्ट के पिता भी हैं। वो अलग बात है कि हम उनको वो लोग जानते नहीं इस बात को। एक बार किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, सो कृष्ण इज योर गॉड, कृष्ण आपके भगवान है? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो, कृष्ण आपके भी भगवान है। तो वो एकदम चकित हो गया। तो बात ये है कि वो समझ नहीं पा रहे। जैसे सूर्य कोई मुसलमान सूर्य, हिंदू सूर्य, अमेरिकन सूर्य नहीं होता है, सूर्य एक ही होता है और पूरे विश्व को प्रकाश देता है, कोई भेदभाव नहीं करता। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सभी के भगवान हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू लोग पूजा करते हैं तो इसलिए केवल कृष्ण हिंदुओं के भगवान हैं। तो इस विराट रूप के प्रदर्शन के द्वारा भगवान ने दिखाया कि पूरी सृष्टि उनके इस विराट रूप में है और जो उनके ऊपर धारित है तो सभी के भगवान हैं। ये बात प्रत्यक्ष रूप से मालूम चल पाई। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। ये बात याद दिलाई जा रही है चौथे अध्याय की, जो भगवान ने कहा था कि ये भगवद गीता की जो परंपरा है वो काल के प्रभाव में नष्ट हो गई है, इसलिए वो दोबारा शुरू कर रहे हैं और अर्जुन के द्वारा इस परंपरा को प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। अर्थात ऐसा नहीं है कि खाली भगवान सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई मेरे से परे कुछ नहीं है और अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित ना करें। अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करते हैं भगवान कृष्ण और विराट रूप के द्वारा, ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी फ्रॉड लोग हैं उनके मुंह चुप हो जाए, वो कुछ ना बोल पाए इस संबंध में। और अगर वो बोलते हैं कि वो भगवान हैं तो चैलेंज कर सकता है कि उन्हें कृपया अपना विराट रूप दिखाएं। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करी क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। अर्थात अर्जुन का उद्देश्य यही था कि भगवान की कीर्ति पूरे विश्व में फैले। वो स्वयं तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने प्रेममय संबंध जो कि उनको भगवान से है उसमें पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन पूरा विश्व कृष्ण को भगवान के रूप में जान सके ये उनकी लालसा है। इसे कहते हैं उत्तम श्लोक लालसा, कि भगवान की कीर्ति पूरे विश्व में फैले, ये सच्चे भक्त का लक्षण है। और इस प्रकार के भक्त अर्जुन हैं और उन्हीं के पदचिन्हों में चलते हुए हम सबको भगवान की कीर्ति का प्रचार पूरे विश्व में करने का प्रयास करना है। ये भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट करता है, जैसा कि भगवान गीता में स्वयं बोले हैं। हरे कृष्णा।